प्रिय युवा मित्रों, नमस्कार फ्रेंड्स। आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मुझे भारत रूस संबंधों पर आप सबसे कुछ बात करनी होगी, तो माफी चाहूंगा कि मैं अभी पिछले सप्ताह की बातों को लेकर नहीं चल पा रहा हूं, लेकिन हम लोग उस पर आएंगे डेफिनेटली। उन बातों के प्रति, उस तरह के सिस्टम के प्रति आप लोगों ने जो विश्वास व्यक्त किया है, और वाकई में वो आपको सबके लिए बहुत उपयोगी भी रहेगा, तो उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। लेकिन आज मुख्य विषय के तहत हम भारत रूस संबंधों के बारे में एक अलग ही अंदाज में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आइए कुछ जो दूसरी खबरें हैं उन्हें देख लेते हैं। अगर आपने डीडी न्यूज सुनी हो तो उसमें एक शब्द बार बार आ रहा था, AFSPA, जिसे बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं अपसपा। कुछ अखबारों में भी ये शब्द आज आया है, और यहां तक कि जो टाइम्स ऑफ इंडिया है उसने तो बकायदे एडिटोरियल भी लिखा है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो अपसपा की बात कही जा रही है ये क्या है। देखिए, सिविल सर्विस की तैयारी इसी अंदाज में होती है, और सच पूछे तो जो गाइड करने वाले हैं, अब देखिए मान लीजिए कि आप साइंस बैकग्राउंड के, यहां तक कि अगर आप ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के भी हैं, तो आप नहीं अंदाजा लगा सकेंगे कि अच्छा ये जो शब्द है ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जो गाइड करने वाले हैं उनको इस बात की जानकारी रहती है कि ये क्या है, बैकग्राउंड जानते हैं, क्यों इम्पॉर्टेंट है उसे समझते हैं, तो आपके नॉलेज में वो ले आते हैं। दोस्तों, बेसिकली ये एक्ट है, एक कानून है जो 1958 में आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया कानून है, स्टेट का नहीं है। नागालैंड में यह लागू है, और भी दूसरे नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे स्टेट हैं कुछ स्टेट में लागू है, जैसे कुछ क्षेत्रों में अरुणाचल प्रदेश वगैरह में, असम के क्षेत्रों में लागू है। ये एक्ट है क्या? ये बहुत ही सिंपल सा एक्ट है। इसके फुल फॉर्म को मैं बाद में आपके सामने रखूंगा कि जो डिस्टर्ब एरिया है, आप जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में असंतोष की स्थितियां बनी रहती हैं, है ना, ये बकायदे आपके सिक्योरिटी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा वाला जो विषय है उसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो नॉर्थ ईस्ट में जनरली इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, तो जो डिस्टर्ब एरिया है वहां लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी रहे, इसके लिए आप दो तरीके अपना सकते हैं, या तो सिविलियंस के हाथ में हो जैसे दूसरी जगहों पर होता है, कलेक्टर और एसपी देखते हैं उसको, या फिर आप आर्मी को सौंप देते हैं कि आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करिए। तो जब आप आर्मी को सौंपते हैं तो तभी स्थिति में आप ऐसा करेंगे यदि स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो और आपको लग रहा हो कि सिविलियन के बस की बात नहीं है। तो इस एक्ट के जरिए जो हमारी आर्म्ड फोर्स है उनको कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं, इस तरह के विशेषाधिकार कि वो किसी को भी जब उन्हें लगता है, आशंका होती है, तो उसे गिरफ्तार कर सकते हैं, और इसके बाद गिरफ्तार करने के बाद उन्हें नजरबंद कर सकते हैं, मतलब कैद में रख सकते हैं। तो इस तरह के कुछ अधिकार दिए हुए हैं, आप इन्हें कह सकते हैं कि कुछ निरंकुश जैसे अधिकार हैं, इनको लेकर के लगातार आलोचना भी होती रहती है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के बात यह है, कल परसों जो नागालैंड में घटना घटी तो कल बकायदे ये डिमांड की जाने लगी कि ये जो कुछ जो संगठन है या कुछ जो वहां के लोकल लीडर हैं कि नहीं ये अपसपा को हटाया जाना चाहिए क्योंकि आर्म फोर्स के पास बहुत ज्यादा अधिकार हैं, उसी के नतीजे में ये जो नागरिक हैं राज्य के मारे गए। अब इसका जो फुल फॉर्म है इसका चरित्र आपको क्लियर हो जाएगा, ए का मतलब है आर्म्ड, एफ फोर्स्ड, एस स्पेशल विशेष अधिकार है, पी पावर ए एक्ट ऑफ सपा, आर्म्ड फोर्स्ड स्पेशल पावर एक्ट। टाइम्स ऑफ इंडिया में इसके बारे में एक एडिटोरियल छपा हुआ है, उसे आप लोग देख लेंगे। इकोनॉमिक टाइम्स में आज दो एडिटोरियल हैं और बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल हैं, संभव हुआ तो इसका हिंदी अनुवाद हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आप लोग इसे थोड़ा सा जान लें और कोशिश करें कि थोड़ा आप इसे पढ़ सकें तो, क्योंकि इससे थोड़ी सी आपकी इंग्लिश भी बेहतर होगी। एक है FMCG को लेकर, FMCG क्या, इस शब्द का बहुत प्रयोग किया जाता है। F का मतलब है फास्ट, M का मतलब है मूविंग, C का मतलब है कंज्यूमर, G का मतलब है गुड्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जिनका हम सब जो उपभोक्ता हैं बहुत तेजी के साथ काफी कुछ उपयोग करते हैं। बेसिकली एडिटोरियल इस बात को लेकर के है कि कल के अखबार में मैंने एक खबर पढ़ी थी कि जो हमारे रिटेलर्स हैं, जो खुदरा व्यापारी हैं, और यहां तक कि जो होलसेलर भी हैं, वो इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनी आ गई ना, अमेजन और रिलायंस वगैरह बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई हैं जो बकायदे ऑनलाइन सामान बेच रही हैं, कि इसके जो उत्पादक हैं या जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, किन वस्तुओं का, FMCG वस्तुओं का, वो जिस कीमत पर रिलायंस और अमेजॉन जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को होलसेल में सामान देती हैं, उसी रेट में हमें भी सामान मिलना चाहिए। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उन्होंने डिमांड की है, क्योंकि देखिए अगर रिलायंस अमेजॉन उनको आप सस्ते रेट में देते हैं तो सस्ते रेट में बेचेंगे, तो ऐसी स्थिति में ये जो रिटेलर हैं ये कैसे सर्वाइव करेंगे। और अभी भी इन सब स्थितियों के बावजूद भारत में 85% जो FMCG की सप्लाई है वो रिटेलर्स के द्वारा ही की जाती है, और ये हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस है। कल्पना करके देखिए कि धीरे धीरे अगर ये बाहर हो गए तो कितनी बड़ी एक बेरोजगारी की स्थिति आ जाएगी। तो इनकी जो डिमांड है व्यापारियों की वो बिल्कुल सही है, ये भी आपके सिलेबस का हिस्सा है, इकोनॉमिक्स का है, तो लेटेस्ट आपको डिमांड मालूम होनी चाहिए। और बकायदे एडिटोरियल में इसके पक्ष में बात रखी गई है कि नहीं, सरकार को इनके बारे में कुछ न कुछ करना चाहिए। इकोनॉमिक टाइम्स में जो अगला एडिटोरियल है दोस्तों, वो म्यूनिसिपैलिटी के जो रेवेन्यूज होते हैं, या कह लीजिए जो लोकल बॉडीज हैं, उसमें म्यूनिसिपैलिटी भी आप कुछ साथ, इसमें आप म्यूनिसिपैलिटी को और नगर पालिकाओं को कुछ सीमा तक ले सकते हैं, नगर निगम भी है, पंचायतों के बारे में तो बात नहीं की गई है। तो अभी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने एक स्टडी की है जो स्टेट फाइनेंसेस की जो स्थिति, राज्यों में जो वित्त की स्थिति होती है उसको लेकर के 2021-22 को, तो उसने रिकमेंड किए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, और उसमें यह कहा गया है कि हमारी जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं, या आप कह लीजिए जिसे आप थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी या थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, है ना, सरकार का तृतीय स्तर, एक तो केंद्र हो गया, दूसरा राज्य हो गया, और ये फिर ये हो गया म्यूनिसिपैलिटी वगैरह, नगर पालिका, नगर निगम, तो इनके एक तो गवर्नेंस की स्थिति को बेहतर किया जाना चाहिए, प्रशासन की जो स्थिति है बेहतर होनी चाहिए, इन्हें वित्तीय स्वायत्तता देनी चाहिए, फाइनेंशियल ऑटोनोमी दी जानी चाहिए, और साथ ही साथ इन्हें ऐसी क्षमता प्रदान की जानी चाहिए, ऐसी ताकत दी जानी चाहिए, इनकी क्षमताएं ऐसी बनाई जानी चाहिए कि ये अपनी तरफ से रेवेन्यू जुटा सकें, आय जुटा सकें। और इसके तहत जो रिकमेंड किया गया है वह प्रॉपर्टी टैक्सेस को लेकर, कि इनकी जो आय का सबसे बड़ा जो साधन है वो प्रॉपर्टी टैक्स है, इस पर विचार किया जाना चाहिए। 15th जो फाइनेंस कमीशन है उसने भी कुछ इसी तरह की सिफारिशें की थी, ये एडिटोरियल मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, आप लोग इसे देखेंगे और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे उन्हें बेहतर होगा कि आप नोट भी कर लें। दोस्तों मैं मुख्य विषय पर आता हूं, भारत रूस संबंध। देखिए अगर हम भारत रूस संबंधों पर सीधे सीधे जाएंगे तो कोई बात बनने वाली नहीं है। मैं खासकर यह बताने जा रहा हूं कि इस पर आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए एग्जामिनेशन को देखते हुए। पहली बात, यह आपके सिलेबस में है, अगर आप अपना सिलेबस उठा करके देखेंगे तो उसमें दिया हुआ है कि विश्व की जो बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं और जो बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्र हैं उनके साथ भारत के क्या संबंध हैं, ये आपको पढ़ना चाहिए। तो रूस एक बड़ा राष्ट्र है, महत्वपूर्ण राष्ट्र है, तो रूस के साथ भारत के जो संबंध हैं आपको मालूम होने चाहिए। अब ये कैसे मालूम होगा, इसके जो लेयर्स होंगे, पहली बात तो ये कि आपको भारत की विदेश नीति का जो चरित्र है शुरू से लेकर के अभी तक वो आपके नॉलेज में होना चाहिए दोनों ही कामों के लिए। पहला ये है कि प्री में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप सही उत्तर तक पहुंच सके इसके लिए, और मेंस में अगर कोई एनालिटिकल क्वेश्चन आता है तो उसका सही आंसर दे सके, एक वजनदार आंसर दे सके, जो 10 में से आपको 6 मार्क्स दिला सके उसके लिए भी। तो हमारे पास विदेश नीति की जानकारी होनी चाहिए, विदेश नीति का कैसे विकास हुआ और अब हम कहां तक आ गए हैं। इसके बाद फिर भारत और रूस के जो संबंध रहे हैं ऐतिहासिक उस समय से लेकर, वो आपकी जानकारी में होनी चाहिए, आपको रटना नहीं है, सामान्य सी जानकारी आपके पास होना पर्याप्त होगा, क्योंकि वो इतिहास पर नहीं पूछा जाएगा भारत और रूस के संबंधों के इतिहास पर आप लिखिए, नॉट एट ऑल, क्योंकि जब हम इसके इतिहास को जान लेंगे, इसकी बैकग्राउंड को जान लेंगे तो हमारे पास वर्तमान को परखने की दृष्टि पैदा हो जाएगी, राइट। अब हम वर्तमान पर आते हैं। कल की अगर आपने रेडियो की न्यूज सुनी हो तो कल के रेडियो न्यूज में भारत और रूस के संबंधों के कुछ बिंदुओं को स्पर्श करने की कोशिश की गई थी, जैसे उसमें यह बताया गया था कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो बकायदे भारत रूस के सहयोग से तैयार किया है। देखिए ब्रह्मोस, ब्रह्म ब्रह्मपुत्र नदी है और मोस जो है वो मास्कवा नदी है रूस की, उन दोनों को मिलाकर के ब्रह्मोस शब्द बनाया गया है। इसीलिए इंग्लिश में बी बड़ा होता है बी आर ए एच, फिर एम बड़ा हो जाता है, एक ही शब्द होता है फिर एम बड़ा हो जाता है, ब्रह्मोस मिसाइल। SU-30 जो लड़ाकू विमान है इसमें रशिया का सहयोग है, जो T-90 टैंक का जो हमारे उत्पादन हो रहा है इसमें रशिया का सहयोग है। कुंडन कुलम परमाणु ऊर्जा जो संयंत्र लगाया जा रहा है रशिया के सहयोग से लगाया जा रहा है। AK-203 असाल्ट राइफल्स के उत्पादन की जो बात की जा रही है और जिसके बारे में अभी समझौता भी हुआ है, अभी जब पुतिन साहब भारत आए थे और भारत ने 6 लाख ऐसे राइफल्स खरीदने की बात की गई कही है और इसके उत्पादन के लिए अमेठी को चुना गया है, तो यह भी रूस के सहयोग से हो रहा है। ये थोड़ी सी बैकग्राउंड की चर्चा कल के न्यूज में थी, लेकिन यदि आप बहुत अच्छे से जानते हैं तो प्रधानमंत्री जी और जब राष्ट्रपति पुतिन मिल रहे थे तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी ने कुछ संधियों की बात की थी। 1971 में भारत और रूस के बीच में एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट संधि हुई थी, 1971 में शांति मैत्री और सहयोग संबंधी समझौता। देखिए हालांकि भारत नॉन अलाइन मूवमेंट का लीडर रहा है, अपने आप को गुट निरपेक्ष आंदोलन में मानता है, लेकिन इस पर लगातार ये आरोप लगता रहा है कि उसका झुकाव रूस की ओर था। 1990 के बाद स्थितियां बदल गईं, एक तरफ तो लिबरलाइजेशन का दौर शुरू हो गया, कम्युनिस्ट मूवमेंट लगभग लगभग पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा कमजोर पड़ गया, रशिया भी बिखर गया, तो भारत का झुकाव अमेरिका की ओर होने लगा। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है कि रशिया से हमारे संबंध खराब नहीं हुए। अब जब रशिया के राष्ट्रपति भारत आए हैं तो इम्पॉर्टेंट जानना यह है कि भारत रशिया के साथ कैसे अपने संबंधों को मेंटेन करके रख रहा है और रशिया हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात है कि डिफेंस में के मामले में रशिया शुरू से भारत का सबसे बड़ा सहयोगी रहा है, वस्तुओं के चाहे उत्पादन डिफेंस जो गुड्स होते हैं उनकी सप्लाई को लेकर के हो या फिर आप यूं कह लीजिए कि सहयोग अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहयोग देने की बात हो, रशिया हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है। पिछले महीने हम लोगों ने बात की थी S-400 के बारे में, यानी ये मिसाइल्स है, डिफेंस मिसाइल है। अमेरिका चाह रहा था कि नहीं भारत रशिया से न खरीदे, लेकिन भारत ने इस बात की परवाह नहीं की, अमेरिका के दबाव में नहीं आया और बकायदे रशिया ने भी हमें S-400 मिसाइल्स दी। फिर आप देख रहे हैं कि चीन किस तरीके से हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। रूस और चीन बहुत अच्छे सहयोगी हैं और अभी जबकि राष्ट्रपति भारत आए हैं तो रूस ने भी साफ साफ चीन को ये मैसेज दे दिया है कि ठीक है आपके भारत के साथ जो भी संबंध हो, लेकिन आप ये मत समझिएगा कि अगर हम आपके दोस्त हैं तो हम भारत के विरोध में खड़े हो जाएंगे, भारत के साथ भी हमारी मित्रता उतनी ही जबरदस्त है। फिर अफगानिस्तान के मामले में देखिए, अफगानिस्तान के मामले में शुरू में तो बिल्कुल जो रशिया था वो सीधे सीधे तालिबान के समर्थन में खड़ा दिखाई दे रहा था, लेकिन बाद में उसके सुर बदले और अब वो भारत के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। और कल राष्ट्रपति ने साफ साफ ये बात कही कि अफगानिस्तान के मामले में भारत और हमारी दोनों की चिंताएं समान हैं। इसका मतलब है कि भारत और रूस के जो संबंध हैं वर्तमान राजनीतिक और रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत ही घनिष्ठ हैं और दोनों इस मामले में बिल्कुल स्वावलंबी तरीके से निर्णय ले रहे हैं। न तो रूस चीन के दबाव में आकर के कुछ कर रहा है, न भारत अमेरिका के दबाव में आकर के कोई निर्णय ले रहा है। दोस्तों जो इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं उनकी तैयारी का जो डायरेक्शन होता है, जो दिशा होती है, वो लगभग लगभग कुछ इस तरह की ही होनी चाहिए, तभी मुझे लगता है कि मेंस के सही सही आंसर देने की स्थिति में हम आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स के क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड की जा रही हैं। हम लोगों की जो ऑफलाइन क्लासेज हैं 27 मार्च से 10 अप्रैल के बीच में होंगी, इसके लिए विराज निषाद ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, जो चक्र दोयम गांव के हैं, उनका जिला है गोरखपुर और उत्तर प्रदेश। विराज आपका स्वागत है। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, अंकित राज मुंबई से, शिप्रा पॉल, ज्ञानेंद्र यादव, आर्यन गुप्ता और ज्योति भंडारे, आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।